ओम शांति। 1 जनवरी 1967 का पेपर क्लास चल रहा था, पहले पेज के मध्य आदि में। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले पहले नंगी आई। मना, जब आई थी षष्ठ रूपी रंगमंच पर तो कोई भी आत्मा के ऊपर लेपक्षेप नहीं था, न पाप का लेपक्षेप था न पुण्य का हिसाब किताब था। एकदम सात्विक आत्मा आई, फिर 84 जन्म पार्टी बजाया। आत्मा ने एक शरीर लिया, दूसरा लिया, करते करते 84 जन्म लिए, 84 शरीर धारण किए, और जाने कितने कितनी आत्माओं के संग के रंग में आए। ये चक्र पूरा हुआ, अभी चक्र पूरा हुआ तो वापस जाना है, लेकिन 84 के इस चक्र में जितनी आत्माओं का संग का रंग लिया है और उनके साथ जो भी पाप पुण्य का हिसाब किताब बनाया है, वो हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होता, वो लेप छेप जब तक आत्मा के ऊपर से नहीं उतरता, जैसे आत्मा नंगी आई थी वैसी ही नंगी जब तक नहीं बन जाती, तब तक वापस नहीं जा सकते। अभी वापस जाना तो है ना, वापस जाने के लिए अभी याद की ही बहुत मेहनत है, क्योंकि याद के बल से तुम बच्चे बहुत पाप भस्म कर लेते हो। याद की मेहनत है, फिर इजी क्या है? कहते तो है सहज राजयोग, तो मेहनत क्यों है? सहज है, राजयोग कहा जाता है, राज ज्ञान तो नहीं कहा जाता। और सहज है तो उसका कारण भी होगा, सहज इसलिए है जो मोहब्बत में रहते, एक की मोहब्बत में रहेंगे, मनसा में वाचा में कर्मण इंद्रियों में कोई और का मोह नहीं आवेगा, और से मोहब्बत पैदा नहीं होगी, एक से ही लव होगा। तो मेहनत भासेगी या सहज होगा? मेहनत तब भासती है जब अनेकों में बुद्धि उग जाता है, विचारी याद आती है, और विचारी याद कब आती है? अभी संगम युग में रील घूम रही है ना, शूटिंग की रील कहो, रिहर्सल की रील कहो, रिकॉर्डिंग की रील कहो, घूम रही है। तो 63 जन्मों में जहां जहां जिन जिन आत्माओं से विचारी बुद्धियोग लगाया है, विचारी संसर्ग संपर्क किया है, वो रील में इमर्ज होता रहता है, और जब रील में वो विचारी संसर्ग संपर्क इमर्ज होता है तो बाप हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि बाप है शिवालय बनाने वाला, और जो भी देहधारी धर्म गुरु है या मनुष्य गुरु है या मनुष्य आत्मा है भूषा में, दुनिया को वैश्यालय बनाने वाली। तो बाप देखता है कि इनका बुद्धियोग औरों से जुटा हुआ है, तो दिल से दिल को राहत होती है। अगर दिल दूसरी तरफ बच्चों का है तो बाप न्यूट्रल हो जाता है, देखता है कि बच्चों की दिल सिर्फ बाप की तरफ है तो बाप का भी प्यार आता है कि ये बच्चा शिवालय बनाने के लिए मेरे कार्य में सहयोगी जरूर बन सकता है। लायकात देखी जाती है ना, शिवालय बनाने के लिए क्या लायकात चाहिए, खास बात कौन सी है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये सबसे बड़ी लायकात है। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। अगर ये लायकात आती है तो बाप समझते हैं ये बच्चा मेरा कार्य करने में बहुत आगे जा सकता है। तो मुख्य मेहनत याद की तब होती है जब व्यभिचारी याद आती है। श्रीमत के बरखिलाफ कर्म होने लग पड़ते हैं तो श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति होने लग पड़ती है, फिर कठिन भासता है। नहीं तो बाप का ज्ञान भी बहुत सहज है और बाप की याद भी बहुत सहज है। सहज किसके लिए है? सभी पांडवों के लिए सहज है या एकलव्य के लिए सहज है? है? एकलव्य के लिए बहुत सहज है और पांडवों के लिए नंबरवार सहज है। बाकी ज्ञान इजी है, कोई भी धारण कर सकता है, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, कुंचा हो, ज्ञान तो धारण कर सकता है। कान से सुनाई नहीं पड़ता है वो इशारे से धारण कर सकता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है अंधा है वो कानों से सुनकर के सारा ज्ञान धारण कर सकता है। कोई रईस हो या गरीब हो, ये ज्ञान सब कोई के पल्ले पड़ सकता है। दुनियावी ज्ञान उसमें तो कहा जाएगा गरीब है तो बेचारा कैसे पढ़े, साहूकार का बच्चा है तो पढ़ाई पढ़ सकता है। ईश्वरीय ज्ञान के लिए ये बात नहीं है। देश का है, विदेश का है, मैदान का है, पहाड़ी है, कोई भी बच्चा है, भाषा को न जानने वाला बच्चा भी है तो भी बाप का ज्ञान धारण कर सकता है। सिर्फ लगन होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए। किस बात में? जैसे आत्माओं का आत्माओं से अटैचमेंट हो जाता है, ऐसे आत्मा का परमात्मा बाप में अटैचमेंट होना चाहिए। अभी तो देखो अच्छे अच्छे भी करते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो भी याद करते हैं, परंतु जब की सदा काल निश्चय बुद्धि रहे और इस याद की यात्रा पर चले। बाप समझाते हैं कल्प कल्प में आकर के तुमको नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान देता हूं। क्या कहा? पुराने ज्ञान से नई दुनिया नहीं बनेगी। शास्त्रों में जो भी ज्ञान है वो 2500 साल पुराना ज्ञान है। कोई नई बातें नहीं सुनाते हैं। और बाप आते हैं, बेसिक में भी आते हैं, बेसिक नॉलेज भी सुनाते हैं तो नई बातें सुनाते हैं। बेसिक नॉलेज में कौन कौन सी नई बातें सुनाई जो शास्त्रों में नहीं थी? क्या सुनाया? शास्त्रों में परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप ने क्या सुनाया? एक व्यापी तो एडवांस में सुनाया जा रहा है, बेसिक नॉलेज की बात बताई। बेसिक नॉलेज में क्या बताया? सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, ये बात पक्की हुई। लेकिन इस सर्वव्यापी नहीं है के पीछे क्या बात छुपी हुई है वो बात बेसिक नॉलेज में नहीं क्लियर हुई। ऐसे ही मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। दुनिया कहती है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। बाप कहते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, क्योंकि आत्मा भी एक बीज है, चैतन्य बीज है। जैसे वो जड़ बीज होते हैं, जिस जाति का बीज होगा उसी जाति का झाड़ पैदा होगा, पौधा पैदा होगा। बैंगन के बीज से आम या बबूल थोड़ा ही पैदा हो जाएगा। ऐसे ही ये आत्मा रूपी ज्योति बिंदु मनुष्य का बीज है। ये बीज मनुष्य जाति का है, तो मनुष्य जाति का ये बीज जब कभी भी जन्म लेगा और जहां कहीं भी जन्म लेगा वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा। ये बात हो सकती है कि बीज सुधर जाए तो मनुष्य से देवता बन जाए, और बीज जब बिगड़ता है तो राक्षस बन सकता है। आत्मा सुधरती भी है और आत्मा बिगड़ती भी है। आत्मा सत्व प्रधान भी बनती है, तमो प्रधान भी बनती है। तो ये भी नई बात सुनाई। दुनिया कहती है, गुरु लोग कहते हैं आत्मा की सदाकाल सदगति हो जाए, आत्मा मुक्त हो जाए, मोक्ष मिल जाए, सदाकाल के लिए मोक्ष हो जाए। बाप कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, अगर आत्मा का पार्ट ही हमेशा के लिए खलास हो जाए तो अविनाशी कहां हुई? फिर तो कहेंगे कि आत्मा का विनाश हो गया। तो ये भी बात नहीं हुई कि कोई भी आत्मा की सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल के लिए मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर आत्मा ये चाहती है कि हम शरीर में रहे, सुख भोगे, दुख न भोगे, शांति में रहे, अशांति न हो। ये कोई नहीं चाहता कि ये हमारी आत्मा हमेशा के लिए लोप हो जाए, हमारी आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। अरे परमात्मा के लिए तो लिखा हुआ है कि हर युग में आकर के जन्म लेता है, तो जब परमात्मा ही सृष्टि पर बांधा हुआ है तो आत्मा सदा काल की मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है? तो ये नई बात हो गई। उस नए ज्ञान से, भले बेसिक का ज्ञान है, उस नए ज्ञान से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्राह्मणों का नया संगठन खड़ा हो गया। दुनिया के रीत रसम रिवाज अलग और ब्राह्मणों की रीत रसम रिवाज अलग हो गए। उनकी दुनिया ही अलग हो गई। तो बेसिक नॉलेज में बेसिकली भी नया ज्ञान सुनाते हैं तो नई दुनिया का ठाट बाट गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश-देशांतर में खड़ा हो जाता है। अभी दुनिया का कोई ऐसा देश शायद ही बचा हो जहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखाएं नहीं खुली हो। लगभग सारी दुनिया के सभी देशों में ब्राह्मण फैले हुए हैं। ज्ञान की मोटी मोटी बातों को धारण किया हुआ है। उनकी बुद्धि में ये भी बैठाया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। लेकिन इसके नीचे, इसके अंदर गुह्यता क्या भरी हुई है वो बेसिक नॉलेज में बच्चों को पता नहीं चलता। बात तो सही है, निराकार अगर खुद साकार होगा तो दूसरों को भी साकार ही बनावेगा, फिर मुक्ति कैसे होगी? निराकारी खुद होगा तो दूसरों को भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी देवता बना सकेगा। वो निराकार ब्रह्मा के तन में आया, ब्रह्मा के तन में आकर के उसने गीता ज्ञान सुनाया। गीता ज्ञान सुनाया लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं दिया, क्योंकि अमृत कहा जाता है तब जब मंथन हो। दूध का मंथन किया जाता है, दही का मंथन किया जाता है, तो मंथन करने से उसमें से घृत निकलता है, मक्खन निकलता है, सार निकलता है, नहीं तो सार नहीं निकलता। ऐसे ही बेसिक नॉलेज में गीता ज्ञान तो मिला गीता माता से, लेकिन यह ज्ञान नहीं मिला कि आखिर गीता पति भगवान कौन है। गीता माता है तो माता के साथ गीता पति भी तो होगा कोई, गीता माता का साकार रूप तो ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान दुग्ध की पालना मिली तो वो गीता माता क्या विधवा थी? विधवाओं की तो भारतवर्ष में मान्यता नहीं है, विधवाओं को तो पूजा नहीं होती, सदवाओं की पूजा होती है, मान्यता होती है। बाबा भी मुरली में बोला हुआ है आगे चल करके युगलों की बहुत मेहमान निकलेगी। तो ब्रह्मा बाबा का पति नहीं हुआ क्या कोई? माँ है सिर्फ, ब्रह्मा माने बड़ी माँ है तो बिना बाप के है क्या? यज्ञ के आदि में जाना पड़े, बेसिक नॉलेज में रिसर्च वर्क नहीं होता, गहराई में जाने वाली बातें प्राइमरी नॉलेज में नहीं होती है। जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो रिसर्च वर्क होता है। तो बेसिक नॉलेज में भी परमात्मा बाप ने आकर के ढेर सारी नई नई बातें बताई, उन नई बातों से दुनिया के सब धर्मों से हट करके एक नया धर्म स्थापन हो गया, ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मण धर्म की नई दुनिया बन गई, सफेद पोशधारी ब्राह्मण सारी दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी ड्रेस देख करके ही कोई कह सकता है कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो गुप्त हुए या प्रत्यक्ष हुए है? हम प्रत्यक्ष हुए ना, देखने मात्र से ही, बाहर से देखने मात्र से ही सबको पता लग जाता है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो पंडा बाप के पांडव बच्चे नहीं हुए। पांडव बच्चे कब बनते हैं? मुरली में बोला है, देश निकाला मिला तो तुम पांडव बने ना। जब तक देश निकाला न मिले तब तक कोई पांडव बन नहीं सकता। पांडवों को भी क्या हुआ था? देश निकाला मिला था। तो बेसिक नॉलेज में भी जो बाप के बच्चे बनते हैं, माँ को भी पहचानते हैं और फिर बाप को भी पहचान लेते हैं। माँ के द्वारा जो ज्ञान आया, बेसिक नॉलेज का ज्ञान आया, वो भी नया ज्ञान था दुनिया के मुकाबले। और फिर जो बेसिक नॉलेज से देश निकाला पाए हुए बच्चे आए, उनको बाप का भी ज्ञान हुआ। बाप का ज्ञान होता है तो देश निकाला मिल जाता है। ये क्या बात हुई? अरे माँ का ज्ञान है तो देश निकाला नहीं मिला, और बाप का ज्ञान मिला, बाप की पहचान हुई तो देश निकाला मिल गया। कोई बच्चा माँ का बच्चा हो, माँ की पहचान बताए और बाप की पहचान न बताए, या हीला हवाला करे, तो लोग क्या समझते हैं? है लोगों की बुद्धि में क्या बैठेगा? संशय आवेगा या रिगार्ड आवेगा? संशय आवेगा। क्या संशय आवेगा? अरे ये बच्चा, ये बच्ची अपनी माँ का नाम तो बताती है, ये बाप का नाम क्यों छुपाती है? बाप का नाम छुपाने का मतलब क्या है? तो अच्छा नहीं माना जाता। लोगों की दृष्टि जाती है अंदर से, ऐसे समझते हैं कि ये कोई वैश्या की संतान है, इसलिए अपने बाप का नाम नहीं बताता। तो ये दो ग्रुप हो जाते हैं। एक उन बच्चों का ग्रुप जो अपनी माँ को भी जानते हैं और बाप को भी जानते हैं। माँ बाप दोनों की संतान है, माने प्रवृत्ति मार्ग की संतान है। प्रवृत्ति मार्ग की संतान माना लक्ष्मी नारायण की संतान। देवताएं होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, उनको कहा जाता है अद्वैत, एक ही मत को मानने वाले। उनका एक बाप होता है और उनके मुकाबले दूसरी तरफ होते हैं दैत्य, द्वैत की पैदाइश। दो दो बातें करते हैं, दो दो मतें फैलाते हैं, माने संसार में जो विचार फैलता है वो वैश्यावृत्ति से फैलता है। इसलिए बोला है इन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है, नहीं तो भारत का नाम संसार में बहुत बाला था। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं इन वैश्याओं कुबजाओं अहिल्याओं का भी उद्धार करने के लिए, इनका भी उद्धार करने के लिए मेरे को आना पड़ता है। जो वैश्याएं हैं कुबजाएं हैं अहिल्याएं हैं अथवा इनकी औलादें हैं, इनका भी उद्धार मैं करता हूं। ये भारत की ग्लानी करने के निमित्त बनती है और मैं इनका उद्धार करता हूं, सदगति करता हूं। अभी तो सारा भारत ही वैश्यालय बन चुका है, इसलिए मुरली में बोला है घर घर में वैश्यालय है। ऐसे वैश्यालय को बाप आकर के शिवालय बनाते हैं। खास भारत की बात है तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प आकर के तुमको शिवालय के लिए नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान देता हूं। बेसिक में भी नया ज्ञान दिया लेकिन मां के शरीर छोड़ने के बाद सब निर्धन के हो गए, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना ला राग लापने लगे, जिसको जो आया वैसा रास्ता पकड़ने लगे। मैं आता हूं, आदि में भी मैं था, कारण या कारण मां और बाप के बीच में यज्ञ के आदि में भी झगड़ा हुआ और उस झगड़े का कारण बच्चे बीच में आ गए, जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं यज्ञ के अंदर आई हुई थी उन बच्चों की तरफदारी मां ने ले ली। तीन माताएं मुख्य थी उस समय, जगत पिता के साथ जगदम्बा भी थी, बड़ी माता भी थी और छोटी मम्मी भी थी, और उन दो माताओं के यज्ञ के जाने के बाद यज्ञ से टाइटिलधारी माताएं भी निकली, ब्रह्मा दादा लेखराज और उनका सहयोग करने के लिए ओम राधे सरस्वती। ओम राधे को टाइटल उन दोनों माताओं का मिल गया, बाद में ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद सब ब्राह्मण आर्फन बन गए, कोई धनी गोरी नहीं रहा, आपाधापी होने लगी अधिकार के लिए, अपने अपने जोन्स अलग अलग बना दिए, अपना अपना राज्य अलग अलग बना दिया, धर्म की धारणाएं अपनी अलग अलग बना दी। जैसे कि द्वापर युग में द्वैतवाद की शूटिंग होना शुरू हो गई। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बेसिक नॉलेज में ये द्वैतवाद की शूटिंग शुरू हो जाती है। पहले सारे ब्राह्मण परिवार, सारे यज्ञ का कंट्रोल माउंट आबू से चलता था। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कंट्रोलिंग पावर डिवाइड हो गई। जो भी पुराने पुराने जरासिंधी थे उन्होंने अपने अपने जोन बांट लिए। जैसे द्वापर युग में जब द्वैतवाद सब शुरू होता है तो द्वैतवाद के शुरू होने पर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये अलग अलग धर्म पिताएं मत मतांतर फैलाने वाले आते हैं और अपना अपना राज्य अलग अलग कर देते हैं। अरबियंस आए, इस्लाम धर्म के इब्राहिम आए और उन्होंने अरब देश में जाकर के अपना राज्य स्थापन कर लिया। पहले सिर्फ भारत में ही राज्य था, देवताओं का अद्वैत राज्य था। महात्मा बुद्ध आए, चीन, जापान जैसे पूर्वी देशों में जाकर के उन्होंने अपना राज्य स्थापन कर लिया। क्राइस्ट आए, यूरोपीय देशों में जाकर के उन्होंने अपना राज्य, अपनी भाषा, अपना राज्य, अपने धर्म की धारणा स्थापन कर दी। ये ब्रॉड ड्रामा की बात हुई, लेकिन इसकी शूटिंग कहां होती है, रिहर्सल कहां होती है, कौन करता है रिहर्सल? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही इस बात की रिहर्सल होती है। किन के द्वारा रिहर्सल होती है? उन्हीं कच्चे ब्राह्मणों के द्वारा रिहर्सल होती है जो कच्चे ब्राह्मण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने के बाद कोई मुसलमान बन गए, कोई इस्लामी बन गए, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई बौद्धी बन गए। कन्वर्ट होते होते आखिरी जन्म में जाकर के जब आर्य समाज भारत में आता है तो आकर के आर्य समाजी बन जाते हैं, भारतवासी बन जाते हैं। और उन भारतवासियों में से फिर से सैंपलिंग लगती है तो माउंट आबू में आकर के नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण बन जाते हैं। दुनिया के 9 धर्म हैं खास खास, उन 9 धर्मों के 9 आधार मूर्त मुखिया होते हैं जो झाड़ के चित्र में जड़ों पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। 10वां जो नास्तिक धर्म है वो तो कोई धर्म ही नहीं है, उसकी कोई अपनी धारणा नहीं होती है, इसलिए उसको नहीं गिना गया। भक्ति मार्ग में उनकी यादगार ब्राह्मणों की 9 पुरियां गाई हुई है। शांडिल्य गोत्र का ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, कश्यप गोत्र का ब्राह्मण, 9 प्रकार के ब्राह्मण गाए हुए हैं। इनकी शूटिंग कहां होती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ये 9 ग्रुप तैयार हुए पड़े हैं। 9 ग्रुप्स में से सबसे श्रेष्ठ ग्रुप है 2, सूर्यवंश और चंद्रवंश। यज्ञ के आदि में सूर्यवंश और चंद्रवंश वालों को विधर्मी बच्चों ने झगड़ा कराई दिया। जो कच्ची करवट होने वाली आत्माएं यज्ञ के अंदर घुस पड़ी, उन्होंने माँ बाप में फ्रिक्शन डलवाई दिया। उस फ्रिक्शन के कारण, झगड़े से कारण, राम वाली सूर्यवंशी आत्माएं और उसके फॉलोअर्स बच्चे यज्ञ के आदि में ही यज्ञ को छोड़ करके चले गए। बाकी बचे चंद्रवंशी, ठंडे स्वभाव संस्कार वाले, जैसे चंद्रमा ठंडे स्वभाव संस्कार का होता है, उन ठंडे स्वभाव संस्कार वालों की गोद में ये विधर्मी आत्माएं पलने लगी। जैसे कोई घर का मुखिया बाप शरीर छोड़ जाए और घर में आतताई बच्चे भी बैठे हुए हो, देशी स्वभाव के भी बच्चे बैठे हुए हो और विदेशी स्वभाव संस्कार के भी बच्चे बैठे हुए हो, तो जो वाम मार्गी बच्चे होते हैं, गलत रास्ता अपनाने वाले बच्चे होते हैं, वो माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। माता में एक विकार सबसे जास्ती होता है, वो कौन सा विकार होता है? मोह। बच्चा चाहे जैसा भी कितना दुर्गुणी हो, चोर हो, डकैत हो, गंदे से गंदे काम करने वाला हो, शराबी हो, काबी हो, फिर भी उस बच्चे को अपनी गोद से मां अलग नहीं करना चाहती। ऐसे ही यज्ञ में हुआ। जो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, दूसरे दूसरे धर्म की विदेशी आत्माएं यज्ञ में आकर के पालना ले रही थी, वो ब्रह्मा मां के ऊपर हावी हो गए, होने लगी, और इतनी हावी हुई कि सन 68 बीतते बीतते उनका हार्ट फेल कर दिया। ब्रह्मा बाबा की हृदय गति रुक गई। शरीर छोड़ना उन्होंने पसंद किया, लेकिन उन ब्राह्मण बच्चों को यज्ञ से बाहर कभी नहीं किया। यज्ञ में गोद में पाल करके रखा और वो बच्चे भी गोद के बच्चे बने, मुखवंशावली बच्चे नहीं बने। क्या बने? गोद माना कुखवंशावली बच्चे बन के रहे। इसलिए शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा ने दो प्रकार से सृष्टि रची, एक कुखवंशावली और दूसरी मुखवंशावली। जो कुखवंशावली थे वो गोद का प्यार लेने वाले थे, देह का प्यार लेने वाले थे, ब्रह्मा का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दैहिक सुख में मानसिक रूप से आसक्त होने वाले थे। ऐसे ब्राह्मण बच्चे, उनमें विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? जो ब्रह्मा की देह को याद करते रहे, बल मुरली में बोला कि ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, फिर भी जिसकी आसक्ति लग जाती है वो एक कान से बात को सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसे ही बच्चे यज्ञ के अंदर थे, बल बार बार ये बात मुरली में आई है कि समझाने के लिए तो ब्रह्मा का चित्र त्रिमूर्ति में दिया हुआ है, झाड़ के चित्र में भी दिया हुआ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी त्रिमूर्ति दिया हुआ है, उसमें ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है, अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं, फिर भी रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रह्मा का चित्र रखा जाएगा, सरस्वती का चित्र रखा जाएगा, तो जो रखने वाले प्रेफरेंस देने वाले धर्म गुरु लोग हैं, उनका भी एक दिन नंबर आएगा, उनका भी चित्र रखा जा सकेगा। अगर चित्र रखने की परंपरा ही खत्म कर दी जाएगी तो फिर दीदी दादी दादाओं का चित्र कौन रखेगा? बाप चाहते थे ये भक्ति मार्ग की परंपरा खत्म हो। भक्ति मार्ग में चित्र मूर्तियां सामने रख करके याद करते हैं। क्यों करते हैं? मूर्तियां रखते हैं सामने, मूर्ति या चित्र या फोटो रखा ही तब जाता है जबकि उसकी महिमा करनी हो, कीर्तन करना हो तो रखा जाता है, यादगार बना करके रखी जाती है। ज्ञान मार्ग में इसकी दरकार नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो बताया हुआ है कि यहां तो एक ही चित्र है जो वास्तव में भी चित्र है, चित्र भी है और विचित्र भी है। जिस चित्र में वो विचित्र ज्योति बिंदु प्रवेश करता है वो विचित्र पाठधारी है। ऐसा विचित्र पाठधारी है कि जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको याद आता है, जीवन में एक बार देख लेते हैं तो भी याद आता रहता है, और जो श्रीमत पर न चलने वाले हैं या व्यभिचारी बुद्धि बनने वाले हैं, देह और देह के संबंधों में बुद्धि फंसाने वाले हैं, उनको वो चित्र बार बार भूल जाता है। बार बार देखने के बावजूद भी बार बार भूल जाता है। इसलिए बाप कहते हैं विचित्र का सदा काल के लिए चित्र खींच कर नहीं रखा जा सकता। तो एडवांस ज्ञान में और बेसिक ज्ञान में दिन रात का फर्क हो जाता है। बेसिक ज्ञान में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो आखिर गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान होगा तो गीता को क्लेरिफाई करेगा ना, गीता के हिज्जे हिज्जे करके बताएगा ना। गीता माता है तो गीतापति भगवान साकार होगा या निराकार होगा? अगर कहें निराकार, जैसा कि उन्होंने बेसिक में चित्र बनाया है, गीता का भगवान का जब चित्र बनाते हैं तो एक तरफ ज्योति बिंदु रख देते हैं, दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र रख देते हैं और बताते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। अरे जब वो गीता पति है तो पति साकार होता है या निराकार होता है? ज्योति बिंदु आत्मा वो तो आत्माओं का बाप है, वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध आत्माओं के साथ नहीं बनता। आत्मा आत्मा भाई भाई, बिंदु 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 आत्माए सब आपस में भाई भाई, भाई बहन नहीं, भाई भाई, और वो उनका बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। वो ज्योति बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करता है, मुकरर रथ में आता है, तो अनेक प्रकार के संबंध बन जाते हैं और अनेक प्रकार के संबंध बच्चे बाप के साथ जोड़ते भी हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं विदेशी बनकर के आता हूं ताकि बच्चे बाप के साथ जो चाहे वैसे संबंध जोड़ सके। सब संबंध साकार होते हैं। बाप का संबंध भी साकार, टीचर का संबंध भी साकार, सदगुरु तो होता ही है साकार। सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त। कैसा? अकाल, अकाल माना जिसको काल खा न सके। अरे काल ज्योति बिंदु आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। और शरीर ही नहीं होगा तो अकाल मूर्त कैसे होगा? तो ऐसे ही बिना सोचे समझे कह देते हैं। फिर बोला मूर्त, मूर्त माना साकार, जिसकी मूर्ति हो। और अमूर्त, अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो। तब जब सदगुरु के लिए कहते ही है, जब सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल के रूप में जब मिलता है तो साकार हुआ या निराकार हुआ? जरूर साकार होता है। वो साकार सदगुरु इस सृष्टि पर आता है तो बच्चों का प्रैक्टिकल में सदगुरु बनता है, प्रैक्टिकल में आकर के यूनिवर्सिटी खोलता है। कौन सी यूनिवर्सिटी? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी नहीं खोलता है वो। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी ब्रह्मा के द्वारा खुलती है। कराची से माउंट आबू आने के बाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये नामकरण हुआ। किसके द्वारा हुआ? मुखिया कौन था?
लेखराज,
दादा लेखराज ब्रह्मा। बाप का नाम तो नहीं था विद्यालय में जब खुला तो उसमें बाप का नाम था? अरे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम था ये 51 में जब खुला, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम था? क्या नाम था? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम था। कारोबार सारा बच्चों के हाथ में था, इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी बच्चों की बात माननी पड़ी और वैसा नाम रखना पड़ा। बल सन 66 में आकर के 65 में जब मम्मा बीमार पड़ गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, उस समय बाबा ने मुरली में बोला कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना चाहिए। तुम बच्चों को भी अपने नाम के टाइटल से पहले बी के नहीं लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो एक बात तो उन्होंने सुधार ली। क्या? जो भी 30x40 इंच के दो नए चित्र बनाए, लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र, 65-66 में तैयार हुआ, 65-66 में, तो उन चित्रों में प्रजापिता शब्द तो ऐड कर दिया, लेकिन अपने नाम के सामने कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने प्रजापिता शब्द लिखना शुरू नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे कोई बच्चा मां की पैदाइश है और जन्म से ही मां को जानता है, बाप को जानता ही नहीं। उसे कहा जाए तुम्हारा ये बाप है, तुम अपने बाप का नाम लिखो, तो बाप का नाम लिखने से उसको ईर्ष्या द्वेष आवेगा या प्यार से लिखेगा? है ईर्ष्या द्वेष आवेगा। वो बाप का नाम जानते हुए भी नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको ये आएगा कि बाप छोड़ के क्यों चला गया। तो यही होता है, जो विदेशी विधर्मी बच्चे यज्ञ में घुसे हुए हैं बेसिक नॉलेज में, वो अभी भी प्रजापिता शब्द से बहुत चिढ़ते हैं। पीहू की वाणी जो बहुत प्रसिद्ध वाणी थी, जब पाकिस्तान छोड़ करके माउंट आबू आए तो पाकिस्तान के मकान में वो सारी वाणी को इकट्ठा करके और जमीन में दबा दिया ताकि हमेशा के लिए वो बातें खत्म हो जाए, पीहू का नाम निशान गुम हो जाए, बाप का नाम निशान गुम, बच्चों का नाम बाला होना चाहिए। भारतीय परंपरा में क्या होता है, बाप का नाम आगे रखते हैं और बच्चों का नाम पीछे रखा जाता है। कोई भी कंपनी खोलेंगे, कोई भी फर्म खोलेंगे तो बाप का नाम आगे रखा जाता है। इंग्लैंड में किसका राज्य चलता था, है एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया, तो वो ही विदेशी संस्कृति। विदेशी संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में अंतर है। विदेशी संस्कृति मां को महारानी बनाती है और स्वदेशी संस्कृति में मां और बाप दोनों महाराजा महारानी बनकर के गद्दी पर बैठते थे, क्योंकि यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। प्रवृत्ति मार्ग वाले माने देवताएं और निवृत्ति मार्ग वाले माने दैत्य। तो बाप आकर के अब बताते हैं कि मैं नया ज्ञान देता हूं, ये बातें पहले तुम्हारी बुद्धि में नहीं थी, अब ये नई नई बातें सारी तुम्हारी बुद्धि में आ गई। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, माना दादा लेखराज ब्रह्मा गीता का साकार भगवान नहीं है, इस बात को खुल करके मानना चाहिए, बताना चाहिए। तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में गीता का साकार भगवान कौन माना जाता है, ब्रह्मा माना जाता है, ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल। तो गीता का भगवान शूटिंग पीरियड में कृष्ण ही हो गया ना, फिर मुख से ये कहना गीता का भगवान कृष्ण नहीं है और अंदर से ये पक्का करना कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ही है, तो दो बातें हो गई ना, दो दो बातें होंगी तो द्वैत हुआ। द्वैत से पैदाइश होती है दैत्यों की, और एक बात होगी तो अद्वैत देवताओं की पैदाइश होती है। हमारी तो एक ही बात है, हम बाप के बच्चे हैं और एक ही सत्य बाप है। वो पहले भी यही बताता था, गीता का भगवान निराकार शिव है, साकार कृष्ण नहीं, माने साकार रूप में संगम युग में आए हुए कृष्ण की आत्मा उर्फ ब्रह्मा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। कोई को ऐसा ब्रह्मा का चित्र मिला हो जिसमें निराकारी स्टेज झलकती हो, क्राइस्ट की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, गुरु नानक की तरह, तो वो बताए, कोई चित्र ऐसा मिला, सवाल ही नहीं। क्योंकि मां होती है साकार और बाप होता है निराकार। तो ब्रह्मा आज से अंत तक साकारी पार्टधारी रहा, निराकारी बीज रूप स्टेज उनकी नहीं बन सकी, इसलिए स्वरूप सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। अभी अभी ये भूल सुधर जाती है। वो यज्ञ के आदि वाली आत्मा जिसने ज्ञान का बीज आरोपण किया था ब्रह्मा के अंदर, कि दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का ये अर्थ है, और ब्रह्मा बाबा ने उन अर्थों को स्वीकार कर लिया। वो ही बीज बोने वाली आत्मा अहम बीज प्रदपिता जो आदि में यज्ञ में शरीर छोड़ करके चली गई थी, और उसके साथ जो भी आत्मा शरीर छोड़ करके गई या यज्ञ छोड़ करके गई, वो सब बीज रूप आत्मा है, सूर्यवंशी आत्मा है, ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आती है। मम्मा बाबा का शरीर छूटता है और वो आत्मा आती है, और 6-7 साल के अंदर प्रत्यक्ष होने लगती है। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, ब्राह्मणों की दुनिया में जोर शोर से मनाया गया, क्योंकि बाप यज्ञ के आदि में जो था वो 76 में फिर से प्रत्यक्ष हो जाता है। वो बाप बीज रूप स्टेज वाला था, उसके प्रत्यक्ष होते ही ब्रह्मा की सोल भी प्रत्यक्ष हो जाती है, इसलिए शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है, चंद्रभाल कहा जाता है। निराकार स्टेज वाली तीसरे नेत्र के रूप में कार्य करने वाली शिव की सोल त्रिनेत्री खड़ा हुआ नेत्र दिखाया जाता है, वो शिव का सूचक है, और चंद्रमा अधूरा चंद्रमा वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का सूचक है। आज भी विधर्मी आत्मा अधूरे चंद्रमा को अपने झंडों में लगाती है। पाकिस्तान का झंडा देखा? क्या देखा उसमें? उनके झंडे में भी अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। ये कहां से लिया? ये यादगार कहां से आई? संगम युग से आई। संगम युग में जो भी विधर्मी आत्माएं हैं वो ब्रह्मा की रहबरी में गोदी में पलने वाली आत्माएं, जैसे सूर्य के प्रकाश में कीड़े मकोड़े जल जाते हैं, तिल मिला जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और चंद्रमा के प्रकाश में कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के जीवन काल में वो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं पलती रही, और उनके शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में आपाधापी करके सारे यज्ञ की सत्ता को अपने हाथ में लेकर के बैठ गई। जैसे कि द्वापर युग से विधर्मी और विदेशी आत्माएं सारी दुनिया की सत्ता को अपने हाथ में समेट करके बैठ जाती हैं, आज कलयुग के अंत में सारी दुनिया की सत्ता कौन से देश के हाथ में है? वो देश कौन सा है जिसके हाथ में सारी दुनिया की सत्ता है, महाशक्ति कही जाती है, उस महाशक्ति का नाम क्या है? अमेरिका। इतना हाउ हप करने वाला देश है, अधिकार जताने वाला देश है, कि छोटे छोटे देशों के ऊपर आक्रमण करके उनको नष्ट करता जाता है, अपने अधीन बनाता जाता है। इतना आतंक फैला रहा है और दूसरों के ऊपर उंगली उठाता है, तुम आतंकवादी हो? अरे जिस देश के लोग नेस्त नाबूद हो जाएंगे, छोटे छोटे देश, और उनके ऊपर आक्रमण होगा और वहां के लोग नेस्त नाबूद होंगे, तो वहां के रहने वाले कोई सर नहीं उठा सकते, विरोध में खड़े नहीं होंगे? बड़ा देश है, उसके पास तो बड़ी एटमिक पावर है,